सुरपुज रूपधारी और मुझे याद नहीं, तो हाथ जोड़ करके जोड़ने लगी और स्तव स्तुति करने लगी। भगवान उनके ऊपर में प्रसन्न हो गए, तो ये उनका भाव बदल गया ना। इसलिए कहते हैं कि ये बदल जाता है स्वभाव से, इसलिए ऐसे प्रेम के द्वारा मैं अधीन नहीं हूं जहां पर कभी भी न बदले। और मोर सखा मेरे सखा हैं, रामचंद्र जी के जितना सखा हैं, नृसिंह देव का कौन सखा है? एक सखी तो है लक्ष्मी जी, आज मैं नहीं जाती मुझे डर लगता है यदि कहीं कुछ कर दें, मैं नहीं जाता, नहीं गई पास में। ब्रह्मा इत्यादि थर थर कांपते हुए बहुत दूर रहे, तो उनका कोई सखा नहीं। वामन देव जी का तो कोई जरूर सखा होना चाहिए, है कोई सखा? वामन जी की मैया तो है, किंतु मैया भी उनका सब समय प्रभु भाव रखने वाली, कभी भी बेटा है ये कभी नहीं, बाप भी वैसे। और सखा रामचंद्र जी का कोई सखा है? जरूर है, अग्नि की साक्षी देख करके बनाया सुग्रीव को, और किसको? विभीषण को, निषाद राज को, किंतु कोई भी सखा नहीं, सभी दास, कोई भी सखा नहीं है। रामचंद्र जी के आसन में आकर के दलबहियां दे करके अपना जूठा खिला तो दे कोई, तो सबरी ने तो खवाया, तो सबरी कौन भाव की है? उसमें वात्सल्य भाव है ना, क्या भाव है? अरे वो जिस पेड़ में फल लगते थे, पेड़ के फलों को लेकर के चक करके उसी पेड़ का वो लेकर के रख, ऐसा नहीं ये खा करके रख दिया, नहीं तो उसकी गड़बड़ हो जाती। उसमें प्रभु भाव था, प्रभु भाव वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करे, या तो सखा करेगा या मैया करेगी। नंद बाबा खा रहे हैं, कृष्ण और बलदेव दोनों पर बैठे हैं, बाएं तरफ में कृष्ण और दाहिने तरफ में बलदेव, कुछ खाते हैं, खा करके देखते हैं बड़ा टेस्टफुल रोटी पूरी या कचौड़ी या मानभोग या वो लड्डू, कौन मनोहर लड्डू खाया, देखा जो वाह कितना सुंदर बना है, तो उन्होंने बलदेव जी को खिलाया उसमें से, और फिर उसका अवशिष्ट लेकर के कभी कृष्ण को खिलाते हैं, कभी अपने खाते हैं, कभी उसको खिलाते हैं, कभी बलदेव को खिलाते हैं। आप लोग अपने पिताजी के साथ में कभी एक थाल में खाया है? खाया है सब लोगों ने, कितना आनंद होता है। बाप क्या करता है? हमारी हमारी दादी दादी समझते हो ना, पिताजी की माता जी, वो खाने के लिए के परोस करके पिताजी को दे देते, और हम लोग पीती की तरह रेंगते हुए पिताजी के पास में आ जाते हैं, भाग 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 भाग। दाती बिगड़ती है कि नहीं? दाती बड़ी बिगड़ती थी, तो दाती बिगड़ती ये कहां से आ गया? और हम लोग जहां देखे इसी टो में रहते थे, पिताजी को कुछ खाने के लिए दिया बस पहुंच, और पिताजी हम लोगों को खिला पिला करके सब खा, और वो बड़ी बिगड़ती थी, बीच बीच में डांटती थी, कभी आंख दिखलाती थी, ये चला जाए। किंतु अपने बेटे को देखो कैसा खिला रही है तो बाप भी तो अपने बेटे को ऐसे ही खिलाएगा, ऐसी ही रीति है। तो ऐसे ही समझो मोर सखा और मोर प्राणपति, प्राणपति कहा, प्राणपति माने क्या? प्रियतम कहा, केवल पति नहीं, पति में ऐश्वर्य भाव रहता है जैसे रुक्मणि सत्यभामा में रहता है, ऐसे प्रेम के द्वारा वशीभूत नहीं होंगे। वशीभूत होंगे कैसे? प्राणपति अर्थात प्रियतम, प्रियतम हमारे हैं इस बुद्धि से, गोपियों के भावों से, यही भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। ऐसे ही जो शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति मैंने क्या? शुद्ध भक्ति जिसमें कर्म ज्ञान योग नहीं रहे, इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते, ये समझो शुद्ध भक्ति इसको नहीं कहते। अन्नाभिलाषिता शून्य, इसको भी शुद्ध भक्ति नहीं कहते, भक्ति नहीं है अन्नाभिलाषिता शून्य। यदि कृष्ण के प्रति अनुकूल न रहे तो अन्नाभिलाष शून्य रहे, कोई भी कामना नहीं है, ये इसी का नाम है निर्विशेष बात। और कृष्ण की सेवा करते हुए कुछ अन्नाभिलाषिता रहे तो ये कर्म मिश्रा हो जाती है या ज्ञान मिश्रा हो जाएगी, और ज्ञान कर्म आदि अनाव्रता ये भक्तित्व नहीं है। भक्ति होगा यदि ज्ञान कर्म से आवृत रह करके भी यदि कृष्ण का अनुशीलन हो रहा है तब तक कुछ हद तक ठीक है, किंतु यहाँ पर इसको भी दूर करते हैं, कहते हैं उसके द्वारा अनावृत भी रहे और अनुकूल्य रूप में उनका अनुशीलन हो, उनकी सेवा भी हो। कैसी? कृष्ण को प्रीतिमयी, कृष्ण को प्रीति लगने वाली और साथ ही साथ में अनुकूल्यमयी और साथ साथ प्रातिकूल्य भाव रहित। किंतु इसको ये भी नहीं, ये दो प्रकार की, एक होता है इसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद माने भक्ति सद, 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 जब हम लोग कहें प्रभुपाद तो आचार्य समझिएगा, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी था, आज का लोग दूसरा ही समझते हैं। प्रत्येक शिष्य ही अपने गुरु को प्रभुपाद कह सकता है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, किंतु शिष्य ये देखता है कि जिसको मैं प्रभुपाद कह रहा हूँ, हमारा सेवक हमारा शिष्य मुझको प्रभुपाद मत कहे, ये गुरु के प्रति निष्ठा है। आया समझ में कि नहीं? कुछ
लो,
जैसे हम प्रभुपाद, हमारे गुरुजी अपने गुरुजी को प्रभुपाद कहते थे, उनके सब शिष्य, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके सब शिष्य अपने गुरु को अर्थात इन लोगों को प्रभुपाद कहे, वो राइट रिजर्व रखते हैं कि यदि ऐसा कोई करता है तो उससे सभी लोग खिन्न होते हैं, यद्यपि ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, कोई दोष का नहीं, किंतु फिर भी वो लोग खिन्न होते हैं। तो ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए, इसलिए गुरु जी को हम गुरु जी, गुरु महाराज और कितने विशेषण हैं हम उनको दे सकते हैं। इसलिए कहते हैं क्या, हाँ प्रभुपाद जी का मैं विचार दे रहा हूँ यहाँ पर, सुनो बहुत ही अच्छा है, आज यही, अब तो देर हो जाएगी तभी मैं थोड़ा सा सुना दूँ। चैतन्य चरितामृत में भक्ति और शुद्ध भक्ति की बातें साथ साथ में लिखी गई है, भक्ति शुद्ध भक्ति विशुद्ध भक्ति इत्यादि लिखा गया है। उल्लेख देकर के ऐसा समझो कोई अविद्ध भक्ति भी है ना? निर्मल पानी, पानी खाने से चल जाता, किंतु कहा निर्मल पानी, तो इसका मतलब है अशुद्ध पानी भी होगा, नालियों का पानी, इधर उधर का पानी, नमकीन पानी और सब हैं, गंदे पानी हैं जिनमें कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े भी नहीं होने पर स्वादिष्ट नहीं है, तो ये पानी शुद्ध निर्मल नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर शुद्ध भक्ति है वहां पर कोई अशुद्ध भक्ति भी है ये समझो, अशुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है ये समझो। अन्नाभिलाष से युक्त अपने अपने भोग की कामनाएं से जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जिसको कहते हैं अन्नाभिलाषिता युक्त, कृष्ण का हम भजन करते हैं किस लिए, कि हमको धन धान्य से संसारिक सुखों से परिपूर्ण रखे, ये अशुद्ध हो गया ना? मैं स्वर्ग चाहता हूँ इसलिए भगवान का भजन करना चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ इसलिए भजन करना चाहता हूँ, ये अशुद्ध हो जाएगी। इसे किसी प्रकार की कामना से युक्त होकर के भगवान का भजन करते हैं तो ये अशुद्ध है। ज्ञान कर्म योग आदि के द्वारा आवृत भक्ति हो, किंतु कृष्ण की ही है, किंतु ज्ञान के द्वारा जब चित्त निर्मल हो जाएगा तब भगवान की शुद्ध भक्ति होगी, ये शुद्ध नहीं है। मुक्ति की लालसा से भगवान की जो भक्ति करते हैं ये शुद्ध भक्ति नहीं है। कृष्णेतर भोग अनुशीलन के सहित कृष्ण को छोड़ करके और दूसरी कामनाओं से युक्त होकर के भगवान की जो सेवा होती है, सेवा की जो सज्जा होती है, सज्जा माने दिखावट होता है सेवा नहीं किंतु दिखाते हैं। जैसे कोई एक आदमी निर्जला उपवास किया एकादशी, निर्जला पानी तक नहीं किया और पुराण पुराण सब पढ़ रहा है, तीन चार बार यमुना का स्नान किया, हे प्रभो हमारा लड़का बहुत बीमार है वो ठीक हो जाए, तो ये क्या हो गया? कपड़ा हो गया, जाओ देखो। तो ये ऐसी कोई भी कामना नहीं होगी, कहां तक? मुक्ति तक की कामना भी ना रहे और की तो बात क्या है। हम तो ऐसा है प्रभु भक्ति करना चाहते हैं, हमारे परिवार के सभी लोग सुखी शांति रहे, आनंद से रहें, बच्चों की शादी हो जाए निरोग रहें, लड़कियों की शादी हो जाए वो घर में चले जाएं और मैं आपका भजन करूंगा या करूंगी, ये क्या हुआ? ये गड़बड़ हो गया, ये भक्ति नहीं है। इसको विद्या भक्ति कहते हैं। कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, भाव मिश्रा, व्रत मिश्रा, ये सब भक्तियां ये विद्ध भक्ति के अंतर्गत हैं। इसमें शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त तो दूसरी प्रकार की चेष्टाएं हैं। भगवान की सेवा के अतिरिक्त है कुछ, किंतु जितने गृहस्थ धर्म में ब्राह्मण लोग स्मार्ट लोग भगवान की पूजा करते हैं बस इसी उद्देश्य से करते हैं। अविद्या सेवामयी भक्ति के अनुगमन में भक्ति कहते हैं, जिसमें विद्या न हो, शुद्ध भक्ति हो, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत, कोई कामना नहीं कृष्ण इतर, कृष्ण प्रसन्न हो बस ये कामना, भक्ति की वृद्धि हो ये कामना रहे, ऐसी जो सेवामयी भक्ति है इसको भक्ति कहते हैं। यह भक्ति विद्या भक्ति से स्वतंत्र है, यह शुद्ध है, विष्णु के अनुकल्य चेष्टामयी है, किंतु ऐश्वर्य भाव इसमें मिश्रित है, इसलिए शुद्ध होने पर भी इसके द्वारा कृष्ण वशीभूत नहीं होंगे। रागात्मिक जन की अहेतु की नित्य हरि सेवा के अनुगमन में जो लोभ आदि से प्रेम की सेवा होती है उसी को शुद्धा भक्ति कहते हैं। देखो फिर से, रागात्मिक गोलोक वृंदावन में मोरे पिता, कृष्ण के जो पिता हैं, सखा हैं और प्रेयसियां हैं, इन लोगों की अहेतु की और नित्य हरि सेवा के अनुगमन में, अर्थात वो लोग कैसे सेवा प्रेममयी कृष्ण की कर रहे हैं, कोई सखा किसी के प्राण प्रियतम, किसी के अत्यंत सुंदर मधुर पुत्र, ऐसी भावना से उनकी जो निरंतर तैलधारावत अविच्छिन्न गति से जो सेवा होती है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उसको उसी का नाम है शुद्धा भक्ति। वह केवल मात्र विधि के द्वारा चालित नहीं है। भगवान का प्रतिदिन स्मरण करो, नहीं स्मरण करने से नरक में जाएगा, इसके द्वारा नहीं उत्पन्न है। वो कैसे उत्पन्न हुई? हाँ, उनकी लीलाओं को सुनेगा, गोपियों के साथ में कृष्ण कैसी लीलाएं कर रहे हैं और ये परब्रह्म होकर के उनकी चरण की धूली को लगा रहे हैं, उनके चरण के अवतार को सिर पे ग्रहण कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए मना रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये चीज शुद्धा भक्ति है, उसके अनुगत में होकर के इस चीज को पाने के लिए किसी को लोभ उत्पन्न हो गया, जब साधन भजन उस लोभ से उत्पन्न होकर के रागानुगा, अनुगा माने रागात्मिका का अनुगा अनुगत होकर के, यही शुद्धा भक्ति है। प्रभुपाद शुद्धा भक्ति का प्रचार किया माने क्या? रागात्मिका रागानुगा। रूप गोस्वामी ने शुद्धा भक्ति का प्रचार किया माने क्या? विधि भक्ति को इन्होंने क्या कहा? ये नहीं शुद्धा भक्ति, अभी है शुद्धा होने पर भी अभी मर्यादामयी है, इसके द्वारा भगवान प्रसन्न वशीभूत नहीं होंगे। जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु आए, जिसके लिए स्वरूप दामोदर आय रामानंद के साथ में महाप्रभु का डायलॉग हुआ, रूप सनातन के अंदर में प्रेरणा देकर के जिस भक्ति का जगत में प्रसार किया वो रागानुगा है, वही शुद्धा भक्ति है, उसी भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं। वैधि भक्ति वह भक्ति, अर्थात तो शुद्ध जो भक्ति है या वैधि भक्ति है या अविद्या भक्ति है जो विद्ध नहीं है, वो शुद्ध भक्ति की सहाय्यकारिणी है। प्रभुपाद का सहाय्यकारिणी, सहाय्य माने क्या? सहायता देने वाली। क्या सहायता देने वाली? विषय वासनाओं से अलग हटा करके उसमें लोभ उत्पन्न करा सकती है, यही बस सहायता है, इसका अतिरिक्त उसका काम नहीं। शुद्ध भक्ति शब्द से रागानुगा भक्ति के ही लक्ष्य किया जाता है। अब इसे प्रभुपाद जी अभी क्या लिखेंगे, इस चीज को जिसका अकल पर पत्थर पड़ा है वो नहीं समझेगा। शुद्ध भक्ति शब्द से रागानुगा भक्ति को ही समझना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हैं, इसलिए गौड़ीय वैष्णव की यही विशेषता है और सब संप्रदायों से। उसके प्रति जिसकी रुचि नहीं, उसके लिए कोई ऐसा गुरु नहीं जो उनके प्रति लोभ उत्पन्न करा दे इन कथाओं को सुना करके, तो वो गुरु शब्द का अंतिम सीमा तक वो बाच्य नहीं होगा। शुद्ध भक्ति को भक्ति के पर्याय में पराकाष्ठा कहा जाएगा। पराकाष्ठा माने क्या? इस जगत में भाव तक और दूसरे जगत में प्रेम तक और तीसरे जगत में माने नित्य गोलोक वृंदावन में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि तक। दूसरा बीच में क्यों लिया है? सब सिद्धि होने के बाद में उसको रागानुगा साधन का अंतिम भाव लाना पड़ेगा। ये होगा गोपी घर में जन्म लेने पर, वहां पर उन भक्तों के रागात्मिक जो भक्त हैं उनका संग होगा और उनमें उनकी भाव इसमें संक्रमित होगा। इसलिए कहा ये इस प्रकट लीला में ही विधि बनाई गई है उस संसार में चलना चाहिए। तो कहते हैं कि जे जथा माम प्रबदंते ताम तथा यो भजम। एक आदमी देवता देवियों की आराधना करके सोचता है ये ऐसी मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए जब मैया का धन सब ले लूं, पिता का धन ले लूं, बहन का भाग भी ले लूं और खूब सुखी रहूं। कहे ठीक है ठीक है, तुम इसलिए मेरा भजन करता है जाओ तुमको नरक में, मैं भी ऐसा ही भजन करता हूं, मुझको सब आता है, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझको नहीं आता। तू जो कि बदमाशी करेगा तो ठीक है, मेरे ही भजन है, किंतु मैं उसका फल क्या दूंगा? कोटि कोटि जन्म तक नरक में पीस करके तुमको वैसा दे दूंगा, इसलिए हमारे बिना दूसरा कोई पथ ही नहीं। फल देने वाला कौन है? कर्मों का कौन? गर्भोदशाई विष्णु परमात्मा के रूप में वही सब विचार करके वही फलों के देते हैं, कर्म फलदाता हैं, उनके अतिरिक्त तो कोई फल देने वाला नहीं। इसलिए जैसा उनको जिस रूप में लेंगे, अच्छा मैं ब्रह्म में समा जाना चाहता हूं, ठीक है करो, फिर चखो उसका मजा भी, मैं दूसरों को मारूंगा, ठीक है मारो, बिना शक्ति के तू मार नहीं सकता, अच्छा मारो, और लाखों जन्मे में उसको जाते में पीस करके घून को जैसे पिसाई होती है गेहूं के साथ में पीस देंगे अच्छी तरह, उसका फल भी वो देने वाले हैं। इसलिए हमारे पथ को छोड़ करके और जगत में कोई पथ नहीं है। इस जगत में जो कर्मी ज्ञानी योगी हैं, कहते हैं कृष्ण यदि महापुरुषों का ये लक्षण है कि अपने समान जगत को बना लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं यहाँ पर कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी सभी सुन रहे हैं मेरी कथा, मैं भगवान की रसपूर्ण कथाओं को गोपियों की बातों को कैसे कहूं? ये अनाधिकारी हैं। फिर उनके मन में क्या आया, क्या हुआ? वो महाभागवत है ना, महाभागवत में क्या शक्ति है? अपने भावों को दूसरों में संक्रमित करा दे, कोई डर की बात नहीं। वकान आरम्भ किया और सबको ज्ञानी योगी तपस्वी सभा में जो थे सबको अपने अनुप ढाल करके रसिक बना दिया। तो भगवान ये काम नहीं कर सकते। भगवान जब आते हैं तो कर्मी योगी तपस्वी सबको क्या रसिक नहीं बना देते? इसी प्रश्न के उत्तर में ये बतलाया गया है जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तो थयु भजाम। भाई ये वो महाभागवत तो कर लेंगे ऐसा, मैं ऐसा नहीं करता। जे जथांग माम पर जे जैसा करते हैं मैं उसका फल उसी रूप में देता हूं, ये मेरा स्वभाव है, स्वरूपानुबंधी ये गुण है उनका। हाँ यदि कुछ इधर उधर कराना होगा तो अर्जुन से कहेंगे प्रतिज्ञा नहीं कौन से अनमे भक्ता, तुम प्रतिज्ञा करो, भाई मेरी प्रतिज्ञा नहीं। इसलिए कृष्ण ऐसा नहीं करते, इसलिए कृष्ण ऐसी लीलाओं को प्रचार करते हैं, अपने परिकरों को ले आते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं, वो चाहे तो सबको भी पशु रस का बना दें किंतु बनाएंगे नहीं, सबकी स्वतंत्रता को जैसा तैसा रखते हुए ठीक रखते हुए उन पर कृपा करते हैं, भक्तों के संपर्क से फिर अपनी कृपा को करते हैं। इसी चीज को समझाया गया है, अगले दिन इसको अच्छी तरह से मैं समझा करके बतलाऊंगा, आज यहीं तक रहे, रात हो रही है और अधेरी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर रखें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कोई आए हैं हिमालय में भगीरथ के तट पर, यहाँ बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम के वैराग्यपूर्ण वातावरण में यह कभी नहीं संभव, इसलिए व्यास जी ने यहीं पर बद्रिकाश्रम कहाँ है उनका जन्म भी हुआ मथुरा में, यमुना के बीच में, और यहीं पर उन्होंने साधन किया, यहीं पर उनको सब भागवत जैसा अनुपम रथ। बहुत से लोग इसको साधारण जगत की कामना मूलक चीजों को लेकर के उपहास करते हैं, उनको सर्वथा वो मूर्ख है। जिसमें परीक्षित महाराज जी की सभा में सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद भागवत की कथा कह रहे थे, और जब यह प्रसंग आया जब उन्होंने जब बतलाया कृष्ण के मना करने पर भी गोपियां नहीं लौटी रास्ते, और कृष्ण को बाद विलास में कृष्ण को पराभूत कर दिया, परास्त कर दिया, इसके बाद निराश हुआ। जब रास्ता वर्णन करने लगे तो देखी में परीक्षित महाराज जी ने उनसे प्रश्न कर दिया, कृष्ण तो आपका काम है, उनको ऐसे गर्भित लीला करने की क्या आवश्यकता हुई कि ब्रज में जितने स्त्रियां थी जो दूसरे से विवाहित थी और उनको बुला कर उनके साथ में रास किए, उनके गले में भी पट गए ऐसे हाथ लगाकर, और तरह तरह से अंग भंगी कर करके एकांत में नृत्य कर रहे, ऐसी गर्भित लीला क्यों हुई जिसमें कोई भी मर्यादा को तोड़ सके। और शत्रु भाव से चेष्टा कर रहा है जैसे कम जरा संतोष किया है। शिशुपाल और उनको भी परम गति देवी तो गोपियां जो तन्मय होकर के कृष्ण की प्रति के लिए ऐसी कर रही हैं, और तो तुम्हें उसमें भी ऐसा दिख रहा है, उसी का उत्तर देते हुए अनुग्रहाय भक्तानां मनसं देहं आश्रित भजते सात्विकी लीला जातित्वा तत्परो भवे। अनुग्रहाय भक्तानां मनसं देहं आश्रित भजते तादृशी पीड़ा या सुत्वा तत्व परो। भगवान में दो गुण है, रसिक शेखर कृष्ण परम कारुण, कृष्ण रसिक शेखर। कभी कभी राम भी रसिकता करते हैं, कभी कभी द्वारकाधीश भी रसिकता करते हैं, जैसे रुक्मिणी के घर में सत्य मामा जी के घर, किंतु रसिक शेखर कृष्ण है कौन भजनगण में, तो ये करुणा के एकदम अंतिम सीमा है और रसिक शेखर है। रसिक शेखर होने के नाते रस का आस्वादन करना चाहिए, और रस का आस्वादन कराना चाहते, करने की अपेक्षा अधिक कराना चाहते और परम करुण है, ये करुणा के कारण ही सब समय के भक्त लोग केवल गोपियां समय की उसके लिए नहीं और भविष्यत में जितने होंगे, अभी जितने हैं और भूत में भी जितने हुए थे भक्त, उन सब पर भूत के लिए क्यों? यदि थोड़े से भी वरसित भक्त हुए होंगे तो एक जन्म में तो इसकी सिद्धि नहीं होगी, इसलिए फिर वो जन्म लेंगे। तो उन अत्यंत चमत्कारी ये कथाओं को सुन करके तू भी तत्पर हो जाए, और तत्पर होने के बाद में सकती वो लोग बिंदा बनने को, इसलिए जितने भी भक्त हैं उन पर कृपा करने के लिए अनुग्रहाय भक्तान कहीं कहीं भूतानाम समस्त प्राणियों का अनुग्रह करने के लिए मानसम देहम आश्रित, कृष्ण ने मनुष्य शरीर आश्रय किया ऐसा लगता है क्योंकि यह गलत है, मनुष्य से आश्रय नहीं किया, वो निराकार निरंजन नहीं है, जो जगत में आएंगे तो मनुष्य शरीर को धारण करके ये गलत है। कृष्ण का सचित आनंद यही शरीर है जो वो लोग वृंदावन में नित्य विलास में कराएगा, उसी शरीर साधारण लोगों को मूर्ख लोगों को जो तत्पर नहीं है वो समझते हैं कि वहां पर निराकार जैसे हैं, यहाँ पर मनुष्य से धारण करके और उसके द्वारा लीला कर, नहीं, वहां की 84 करोड़ की भूमि, वहां के परिकरों को, वहां के नित्य धाम को वहां से लेकर के यहाँ पर नई चीज नहीं, इसलिए इसका अर्थ नहीं लगाया जाए जब हम आस्तिका मनुष्य का शरीर नर का शरीर धारण करके नहीं, उनका वही शरीर है उसको वहां से लेकर के लोगों के सामने प्रकट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अवतार, अवतरती अवतार उतरते हैं, तो वो भजते दादी पीड़ा ऐसी लीलाओं को करते हैं लोको उपयोगी, आगे बतला है योग माया के द्वारा मनुष्यों के लिए उपयोगी लीलाओं को अवतरित कराते हैं, इसलिए संसार में ऐसा कोई जोड़ा नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं है जिसमें जोड़े नहीं, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो काम के द्वारा बचित हो, यहां तक कि पौधों में भी जोड़े हैं, कीड़ों में भी जोड़े हैं, सांप का भी जोड़ा होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें काम के द्वारा मुद्दा, ये माया किसी को देकर के जगत को पाल रहे, तो ऐसे भजते दादृति पीड़ा सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं। बहिर्मुख लोग भी इन पीड़ाओं को सुनकर, क्योंकि दोनों सामने है कुछ बराबर ही, इसलिए ये लीलाओं कथाओं को सुनता और सुनते ही उलट जाता है उनका भाव, अब वो काम जो रहता है वो प्रेम के रूप में बदल जाता है, साधन के लिए ये भगवान ऐसी सब लीलाओं को करते हैं जिनको सुन करके भजते दादृति पीड़ा जासुत्वा तत्परो भवे, भवे का गुण रहस्य, ऐसी लीलाओं को सुनकर जो तत्पर नहीं होते हैं वो क्या है, वहां जघन्य पाती है अपराधी है। कृष्ण इन लोगों के माध्यम से, व्यासदेव और सुखदेव के माध्यम से ये चीजें बतला रहे, जरूर सुनना चाहिए, दिली नहीं निश्चित रूप से नहीं सुनेगा पटवाय होगा। लजीव गोस्वामी जी कहते हैं कि आगे इसको और भी परिष्कृत करें, अंतिम श्लोक में ब्रज क्या है, विक्रीतम ब्रज बल्ली इदं चलिष्णु सद्धांता अनुष्ठिया अथवर्ण ये विजह सत्थापूर्वक, बड़े वो कामी हो कैसा कामी, जैसा कि भिन्न मंगल कामी था, ऐसे कितने लाखों लोग, इन लोगों ने भी यदि सुना तो कृष्ण की लीला कथाएं इतनी आकर्षक मनोहर हैं जो आकर्षण करेंगी लोग पैदा कर देंगे, इसे जरूर सुनना चाहिए। और सुन करके भी अजय नहीं होता है तो अपराध समझ। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी विशेष रूप में कहते अनुश्रेणियात अथ वर्णीय विजय भक्ति परां प्रतिलब्ध कामम हृदरोग मासु अपिष्णत चरे। प्रतिलब्ध कामम, काम दो प्रकार का, एक होता है साधारण लोगों का विषयों के प्रति काम, परस्पर परस्पर प्रति काम, और एक आता है गोपियों का काम। गोपियों का काम प्रेम की चरम दशा है। तो प्रतिलब्ध कामम अर्थात तो गोपियों वाला जो प्रेम है उसके समन करके उसको पानी की एक लोभ लालसा हुई और उसको जब करने में लगे तो ये अपने आप वो आती जाएगी और ये काम बिना प्रेम दिए कभी काम नहीं जाता।